विवाह। ऋग्वेद और अथर्वेद के विवाह सूक्तों में विवाह से संबद्ध अनेक तथ्यों का वर्णन है। वेदों में बाल विवाह निषिद्ध है। विवाह वर और कन्या के पूर्ण यौवन को प्राप्त करने पर ही होता था। विवाह माता पिता की स्वीकृति से होता था। सगोत्र विवाह निषिद्ध था। उपर्युक्त विवाह सूक्तों में पति पत्नी के कर्तव्यों का विस्तार से वर्णन है। वैवाहिक कृत्यों में मधुपर्क, पाणिग्रहण, अग्नि परिक्रमा, शिलारोहण, लाजा होम, सप्तपदी, ध्रुव दर्शन, सुमंगलीकरण मुख्य थे। वैदिक विवाह अविच्छेद्य होता था। यह जीवन भर के लिए होता था। पत्नी के लिए पतिव्रता धर्म है तो पति के लिए पत्नी व्रतत्व दोनों जीवन भर के लिए सहचर होते हैं। एक विवाह का प्रचलन था। राज परिवार आदि में बहुविवाह का भी प्रचलन था। शतपथ ब्राह्मण आदि में राजा की चार पत्नियों का उल्लेख मिलता है। ये है महिषी, वावाता, परिवृक्ता, पालागली, पत्नी दूति या सामान्य परिवार की। ब्राह्मण आदि में भी बहुविवाह के उदाहरण मिलते हैं। बृहदारण्यक उपनिषद में महर्षि याज्ञवल्क्य की दो पत्नियों कात्यायनी और मैत्रेयी का उल्लेख मिलता है। 5. स्वयंवर। अथर्वेद के एक मंत्र में स्वयंवर विवाह का संकेत मिलता है। मंत्र में कहा गया है कि आए हुए जनों का नाम लेता हूँ और उनमें से वृत्तहंत्रा इंद्र को चुनता हूँ। इससे ज्ञात होता है कि स्वयंवर में आए हुए प्रार्थियों का नाम लेकर उनका परिचय दिया जाता था और कन्या उनमें से किसी एक को अपना पति चुनती थी। ऋग्वेद में इसी प्रकार के एक स्वयंवर का वर्णन है। राजा पुरुमित्र की कन्या शुंध्यु का कमद्यु ने स्वयंवर सभा में विमद ऋषि को अपना पति चुना था। विवाह करके लौटते समय कुछ अन्य राजाओं ने विमद पर आक्रमण किया था। अश्विनी कुमारों की सहायता से विमद को विजय प्राप्त हुई थी। 6. विधवा विवाह। वेदों में विधवा विवाह का समर्थन प्राप्त होता है। अथर्वेद के एक मंत्र में कहा गया है कि पति की मृत्यु के बाद पत्नी संतान के लिए और अपने जीवन निर्वाह के लिए नवीन पति से विवाह कर सकती है। ऋग्वेद में कहा गया है कि हे नारी, मृत पति को छोड़कर विवाह के इच्छुक दूसरे पति को स्वीकार करो। अथर्वेद में एक मंत्र में संबंध विच्छेद करके दूसरे पति से विवाह करने का उल्लेख है। इसमें पुनर्विवाह करने वाली स्त्री को पुनर्भू कहा गया है। इसे ज्ञात होता है कि स्वभाव या आचार विचार में विरोध होने पर संबंध विच्छेद करके पुनर्विवाह किया जा सकता था। 7. शिक्षा पद्धति। शिक्षा का उद्देश्य प्राचीन शिक्षा का उद्देश्य था शिष्य का सर्वांगीण विकास, उसके ज्ञान ज्योति को प्रबुद्ध करना, उसे प्रखर से प्रखर बनाना और उसके जीवन को सर्वथा सौभाग्यशाली बनाना। विद्या के साथ ही व्युत्पत्ति का भी समन्वय हो, अतः कहा गया है कि सरस्वती के साथ घी भी हो। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए वेद ने दो साधन बनाए, तप, कठोर अनुशासन और दीक्षा। आत्मसमर्पण ही इस उद्देश्य की पूर्ति कर सकता है। प्राचीन शिक्षा पद्धति में संयम और चरित्र को बहुत महत्व दिया गया है। गुरु और शिष्य दोनों के लिए अनिवार्य गुण बताया गया है। वेदों में घी, मेघा, सुमति को शिक्षा का आधार माना है, अतः अनेक मंत्रों में इनकी प्रार्थना की गई है। एक मंत्र में इससे आगे जाकर रितंभरा प्रज्ञा का उल्लेख किया गया है और इससे सूर्यवत तेजस्विता प्राप्त होने का उल्लेख है। रितंभरा प्रज्ञा योगियों और महर्षियों को ही प्राप्त हो पाती है। शिक्षा के विषय को देखने से ज्ञात होता है कि इसमें शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक सभी शक्तियों के विकास का समावेश है। प्राणायाम, योग विद्या, शस्त्रास्त्र विद्या, मल्ल विद्या, आयुर्वेद, धनुर्वेद, गणित, ज्योतिष आदि सभी शिक्षा के विषय थे। शिक्षा के विषय अथर्वेद, गोपद ब्राह्मण और छांदोग्य उपनिषद में इन विद्याओं का उल्लेख हुआ है। छांदोग्य की सूची सबसे बृहत है, इसमें इन विषयों का उल्लेख हुआ है। 1. ऋग्वेद, 2. यजुर्वेद, 3. सामवेद, 4. अथर्वेद, 5. इतिहास, 6. पुराण, 7. वेदांग, 8. पितृविद्या, 9. राशि विद्या, 10. दैव विद्या, 11. निधि विद्या, 12. वाको वाक्य, 13. एकायन, 14. देव विद्या, 15. ब्रह्म विद्या, 16. भूत विद्या, 17. क्षत्र विद्या, 18. नक्षत्र विद्या, 19. सर्प विद्या, 20. देवजन विद्या। इस विषय सूची से ज्ञात होता है कि शिक्षा का क्षेत्र महान है। प्रत्येक मनुष्य कुछ चुने हुए विषय ही पढ़ सकता है। निरुक्तकारी यास्क ने उल्लेख किया है कि विद्या बहुमूल्य निधि है। यह योग्य, जिज्ञासु, संयमी, अप्रमादी, मेधावी, गुरु भक्त एवं व्युत्पन्न शिष्यों को ही दी जाए, अयोग्यों को नहीं, तभी यह फलवती होगी। यमेव विद्या सूची प्रमत्तम मेधाविनम ब्रह्मचर्योपन्नम। अन्न पान। यजुर्वेद और तैत्री संहिता में इन 12 अन्नों का उल्लेख है। 1. ब्रीही, 2. यव, 3. मांस, 4. तिल, 5. मुद्ग, 6. खल्व, चना, 7. प्रियंगु, 8. अणु, 9 श्यामाग, 10 निवार, 11 गोधूम, 12 मसूर। संहिता में चार अन्य अनाजों के नाम भी मिलते हैं, 1 कृष्णब्रीही काला धान, 2 आशुब्रीही साठी धान, 3 महाब्रीही संभवतः बासमती चावल, 4 गवी धूक जंगली गेहूं, गढ़ हेरुआ या गोभी। भोज्य पदार्थों में घृत, दुग्ध, दधि और नवनीत के अतिरिक्त इन पदार्थों का उल्लेख मिलता है, अपूप, स्थालीपाक, मधुपर्क, धानाह, करम्भ, आमिक्षा, परिवाप, क्षीरौदन, मुद्गौदन, पक्ति, मधु, गव्य, मंथ, पुरोडाश, इक्षु, इक्षुरस, खल्व। अथर्वेद में दूध, दही आदि से बने व्यंजनों के लिए ये नाम दिए हैं, क्षीरवान, दधिवान, द्रप्सवान। दही के घोल से बने व्यंजन, रसवान, रसीले व्यंजन, मधुपान, मधु मिलाकर बने व्यंजन, मधुपर्क, घी, शहद या दही मिश्रित भोज्य। सोमरस में दूध, दही और जौ का सत्तू मिलाकर पेय बनाए जाते थे, इन्हें अशीर कहते थे। दूध मिश्रित को गवाशीर, दही मिश्रित को दध्याशीर और जौ के सत्तू मिश्रित को यवाशीर कहते थे। इनका सामूहिक नाम त्रयाशीर था। दालों में मुद्ग, मूंग, मांस, उड़द और मसूर की दालें चलती थी। यौ, जौ का प्रचलन अधिक था। गोधूम, गेहूं का कम, गेहूं का नाम बहुत कम आया है। पेय पदार्थों में सोम और गव्य, दूध, दही, मट्ठा मुख्य थे। सुरा असुरों के पेय में थी, औषधि के रूप में भी इसका प्रयोग होता था। ऋग्वेद में सुरा को द्यूत आदि तुल्य है और त्याज्य बताया गया है। फल, वेदों में इन फलों का उल्लेख है, विल्व, बेल, उदुम्बर, गूलर, पीलू, पंजाबी में पिलकना, करकंधु, बेर, उर्वारुक या उर्वारु, ककड़ी, खरबूजा या तरबूज, पिप्पल, पीपल का फल, कुवल, बेर। वस्त्र और परिधान, वेदों से ज्ञात होता है कि वैदिक काल में वस्त्र उद्योग पर्याप्त उन्नत अवस्था में था। वस्त्र बनाने का काम अधिकांशतः स्त्रियां करती थी, वे पति और पुत्रों के लिए वस्त्र बनाती थी। वेदों में 3 प्रकार के वस्त्रों का उल्लेख है, सूती, रेशमी और ऊनी। सूती वस्त्र के लिए वासस शब्द है, रेशमी वस्त्र के लिए तारपे शब्द है। यह त्रिपा नामक पौधों के तंतुओं से बनता था। गोल्ड स्टूकर और एग्लिंग ने भी तारपे का अर्थ क्षौम वस्त्र या रेशमी वस्त्र लिया है। ऊनी वस्त्र के लिए ऊर्णायु शब्द है। ऋग्वेद और यजुर्वेद में ऊन के कोमल वस्त्रों के लिए ऊर्ण मृदस शब्द का प्रयोग हुआ है। साधारणतया प्राचीन काल में 2 वस्त्रों का व्यवहार होता था, वासस अधो वस्त्र और अधिवास ऊपरी भाग को ढकने वाला वस्त्र। अधिवास को अधिवास भी कहते थे। ऊपर से डाले जाने वाले दुपट्टा या चादर को अधिवस्त्र कहते थे। अधिवस्त्र बहुएं आदि अपने वस्त्रों के ऊपर से डालती थी। ओढ़नी के काम आने वाली हल्की चादर के लिए पर्याणहन शब्द है। नीवी करोति जैसे वाक्य नीवी शब्द से अंतर्वस्त्र या पेटीकोट का भाव प्रकट करते हैं। स्त्रियां ऐसे अंतर्वस्त्र पहनती थी। शरीर के ऊपरी भाग को ढकने के लिए 2 प्रकार थे, एक ढीला चोगे जैसा कपड़ा रैपर पहनना, इसके लिए पर्याणहन अधिवासी और उपवासन शब्द थे 2। दूसरा प्रकार था शरीर से चिपकने वाला कुर्ते आदि के तुल्य वस्त्र पहनना, इसके लिए प्रतिधि और अत्क शब्द मिलते हैं, ये सिले हुए वस्त्र होते थे। द्रापी शब्द चोंगे के लिए आया है, इस पर सोने के तार का काम भी होता था, अतः इसे हिरण्य द्रापी कहते थे। बेल बूटे कड़े हुए परिधान को पेशस कहते थे। ऋग्वेद और अथर्वेद में इसका उल्लेख है। ऋग्वेद में हिरण्य पेशस शब्द का प्रयोग है। इन वस्त्रों पर सोने के तार का काम होता था, ऐसे वस्त्रों को दंपत्ति पहनते थे। यजुर्वेद में सोने के तार का काम करने वाली और बेल बूटे काटने वाली स्त्रियों को पेशकारी कहा गया है। ब्राह्मण ग्रंथों में यज्ञ आदि के अवसर पर यजमान को मृग चर्म और कुशा से बने वस्त्र पहनने का विधान है। सिर पर पगड़ी बांधने की प्रथा थी। पगड़ी के लिए उष्णीष शब्द है। तैतृय संहिता और शतपथ ब्राह्मण में जूते के लिए उपानह शब्द आया है।